आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं,
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
तपस्वी होनहार राजे महाराजे विराजे हैं,
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी होनहार राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
प्रेम के पुष्प खिलाए हैं पुष्प दीदी ने माँ बनकर,
प्रेम के पुष्प खिलाए हैं पुष्प दीदी ने माँ बनकर।
बहन रजनी महकाती है जिसे रजनी गंधा बनकर, प्रेम के पुष्प खिलाए हैं पुष्प दीदी ने माँ बनकर। बहन रजनी महकाती है जिसे रजनी गंधा बनकर। नागपुर के हैं नागों पर, नागपुर के हैं नागों पर आप ही तो जो नाचे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी होनहार राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में।
यहाँ आंगन में मधुबन के बाहें बाबा पसारे हैं,
यहाँ आंगन में मधुबन के बाहें बाबा पसारे हैं।
मधुर वाणी में कहते हैं मेरे बच्चे पधारे हैं,
मधुर वाणी में कहते हैं मेरे बच्चे पधारे हैं। आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी होनहार राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में।
बहुत अच्छे समय पर आए हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है।
बधाई की है बेलाए यहाँ इतनी शक्ति भर ले,
बधाई की है बेलाए यहाँ इतनी शक्ति भर ले।
वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन मोही कर ले।
बधाई की है बेलाए यहाँ इतनी शक्ति भर ले,
वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही कर ले।
मेरा बाबा सदा साथी,
मेरा बाबा सदा साथी, सहज सब साज साजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी होनहार राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
अपने हृदय की इतनी सुंदर अभिव्यक्ति करने वाले इस मधुर वाणी ग्रुप का भी बहुत स्वागत है और शुक्रिया है। हाँ जी, तो अब हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारी संस्था के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। अवश्य ही बहुत सारी जिम्मेवारियों में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी के साथ साथ इजी भी रहते हैं। और हम सब के लिए समय निकाल कर वो दादियों वाली पालना, बाबा वाली पालना अवश्य देते हैं। तभी हम सुनेंगे दीदी जी से इस भट्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं, प्रेरणाएं, और बाद में दीदी मुख भी मीठा कराएंगे टोली देके। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि हम सबके दिल में बहुत प्यारी प्यारी बाबा की यादों की, दादियों की श्रेष्ठ चरित्र भूमि मधुबन में आप सबका अपने ही घर में अपनों द्वारा ही स्वागत है। और प्यारे बाबा अपने बच्चों को देखकर कितना न खुश होते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाप के घर का श्रृंगार हैं। बच्चे ना हो तो घर भी सूना है। संगम युग के अंदर ये बड़ी विशेषता है कि बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया। बाबा ही हम बच्चों की पालना करते हैं। बाबा ने हमको चुना है। बाबा ही अपने घर में अपने बच्चों को संभालते हैं और पालना करते हैं। तो जब हमें कहा गया कि नागपुर और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भट्टी के लिए भाई बहने आ रहे हैं, तो मुझे तो इस सेवा क्षेत्र के अनेक बीज रहे, लेकिन पावरफुल बीज पुष्पा दीदी की बहुत याद आई। क्योंकि पुष्पा दीदी जिसको बाबा कहते हैं बहुत सिंपल, नियमों में पक्की और धारणाओं के अंदर इतनी स्वरूप, और उन्होंने बैठ करके ऐसा वहाँ पर बीजारोपण किया कि नागपुर क्षेत्र के अंदर इतने बाबा के बच्चे, फुलवाड़ी बढ़ती ही जा रही है। और कितने प्यार से उन्होंने इस फुलवाड़ी को सींचा। उसके साथ साथ अभी नागपुर में जो इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर, जो सेवा केंद्र है, उनको संभालने के निमित्त हमारी रजनी बहन, अन्य बहनें और नागपुर धरनी ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पावरफुल ऐसे हैंड्स निकले हैं जो कि महाराष्ट्र के कई सेवा केंद्रों पर जाकर के उन्होंने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर और सेवा केंद्र खोले हैं। तो बाबा कहते हैं जिस बच्चे का बाप से प्यार है, जिस बच्चे का सच्ची दिल है, सच्ची लगन है, जिसका कनेक्शन क्लियर है, जो बाबा के साथ सच्चे होकर के चलते हैं, तो उनको स्वतः ही ऑटोमेटिकली बाप के द्वारा वरदान भी मिलते हैं और साथ साथ सेवा में सफलता भी मिलती है। जिन्होंने पुष्पा दीदी को देखा वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें। थोड़े ही हैं बाद में आए हैं, और क्योंकि उन्होंने कितने प्यार से सेवा की और कितने प्यार से सब बहनों को आगे चलाया, क्योंकि उन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई थी और यहाँ साकार बाबा के पास रह करके बहुत कुछ सीखा। और यज्ञ का जो सिस्टम है, जो यहाँ यज्ञ का सिस्टम है वैसा ही सिस्टम उन्होंने वहाँ पर बनाया, साथ में उनकी सावित्री बहन जो कि कितनी बड़ी विशेषता रही, सारा टाइम बाबा के ज्ञान के गुणों का वर्णन करती और लास्ट में भी बाबा की मुरली सुनते सुनाते ही बाबा के पास रत्नों को बांटते ही दूसरी सेवा अर्थ गई। तो ये कारण, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका मुख्य कारण यही है कि दिल के अंदर सच्चाई, और दूसरा कारण है कि दिल में बाबा से प्यार। तीसरी बात है कि जब हमको बाबा ने खुद चुना है, बाबा कहते देखो मेरे कितने लाडले बच्चे हैं। कल भी बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा, दुनिया में भल कितने आईपीस हो, वीआईपीस हो, लेकिन तुम बच्चे कौन हो, वीवीआईपी। जितना वी लगाते जो, वी मीन्स इम्पोर्टेंट, सारे क्लब के अंदर आप बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक इतने मुख्य पार्टधारी हो, हीरो पार्टधारी हो, हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो इसलिए बाबा कहते तुम मेरे बच्चे कैसे भी हो, दुनिया के सामने चाहे साधारण हो लेकिन बाप के सामने तो बाबा कहते ये मेरे बच्चे विशेष रतन हैं, महान हैं, सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं। और बाबा खुद भी बच्चों को सलाम मालिकम कहता, बाबा कहते मालिक बनने वाले हैं, बाबा कहते ये सलाम करता है। इतना बड़ा विश्व का मालिक जो कि जिसको सारी दुनिया याद करती है, वो अपने बच्चों को सलाम करे तो कितना बड़ा भाग्य है। तो इसलिए भट्टी में आते हैं तो हमें इतना सुंदर भाग्य मिलता है। वैसे तो अभी नागपुर में एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बन गया है, वहाँ पर भी आपको भट्टी करने का मौका मिलता है। वहाँ पर महाराष्ट्र से और अन्य स्थानों से बहनें आकर के भट्टी भी कराती हैं, लेकिन यहाँ पर आप भट्टी करने के लिए क्यों आए हैं, क्यों भट्टी करने के लिए आए? वहाँ तो इतना सुंदर स्थान है, रहने का स्थान भी बहुत अच्छा है, खुला है, और यहाँ तो रहने का स्थान भी बहुत सिंपल है, एक कमरे में कहाँ चार किस्में, दस किस्में कैसे रह पड़े। तो यहाँ क्यों करने के लिए आए बैठी हैं? तपस्या भूमि है। देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मधुबन जो है ये हम सब के दिल में रग रग में बैठा हो। जैसे मधुबन का नाम लेते सब खुशी में झूम जाते, मधुबन में कहते ना बाजे बांसुरिया, इस मधुबन धरनी पर बाबा ने बैठ करके खुद तपस्या की है, और तपस्या के साथ साथ हमारी सर्व दादियों ने भी और वरिष्ठ दादाओं ने भी यहाँ बैठ करके तपस्या की है। बाबा के टाइम पर तो ये एक छोटा सा स्थान था, और बाबा के टाइम पर ये जिस हॉल में बैठे ये नहीं था, बाबा के टाइम पर सिर्फ ट्रेनिंग का नीचे का पोर्शन था, ऊपर का पोर्शन नहीं था जहाँ बहनें ठहरी हैं, और केवल हिस्ट्री हॉल था, शांति स्तंभ भी नहीं था उस समय, शांति स्तंभ भी बाद में ही बना है। तो बाबा ने बैठ करके यही कहा कि ये स्थान ऐसा तपस्वी स्थान हो जिस स्थान के द्वारा सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणें पहुंचे। तो बाबा ने आप सबको पहले से ही याद करके बाबा के शुभ संकल्पों से ही बाबा ने आपको पैदा किया है, बाबा ने ऐसे ऐसे महारथियों को आपके सेवा स्थान पर भेजा और आप सबकी पैदाइश हुई ज्ञान के द्वारा, और अभी आप सबकी बहुत बड़ी पालना हो रही है। तो बाबा कहा करते थे कि बच्चे ऐसा अपनी पावरफुल स्टेज बनाओ जो सारे विश्व के अंदर ऐसे वाइब्रेशन फैले, क्योंकि आज समय ऐसा चल रहा है विश्व की आत्माएं क्या चाहती है, अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ विशेष अनुभव करना चाहती है। तो साकार में बाबा क्या करते थे, 1966 की बात है, उस समय यहाँ मधुबन में एक पहली प्रदर्शनी म्यूजियम के सामने लगाई थी। उस समय बाबा ने क्या किया था, सब महारथी दादियों को और दादाओं को बुलाया था। तो उस समय हमें भी यहाँ रहने का मौका मिला, क्योंकि पुष्पा दीदी आपको मनोहर दादी की बहुत सी बातें सुनाती होंगी, क्योंकि पुष्पा दीदी करनाल की हैं, तो मैं भी करनाल से हूँ, हम भी उनके साथ के हैं। जब मैं वहाँ पैदा हुई तो पुष्पा दीदी वहाँ थी, तो उन्होंने ही मेरे को बचपन से पाला भी, साथ में ज्ञान में भी साथ साथ चले। जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर के पास ही वो थे, तो वो मेरे को सुनाती थी कहानी, मेरे को क्या मालूम है। तो वो हम तो छोटे से थे, तो उसी घर में ही पैदा हुए, तो वही मेरे को खिलाती थी बहलाती, जैसे बच्चा किसी को मिल जाए तो क्या होता है। तो वो भी ज्ञान में आ गए, तो हम भी छोटेपन में ज्ञान में आ गए। तो ज्ञान में आने के कारण साथ साथ करनाल में इकट्ठे ही थे, फिर वो भी मधुबन आई तो मैं भी मधुबन आई, फिर हमारे साथ हम वो कलकत्ता गए थे कुछ टाइम, वहाँ कलकत्ता भी गए, फिर पटना भी गए, नेपाल भी गए, फिर मैं तो उधर रह गई और पुष्पा बहन नागपुर चली गई सेवार्थ। तो वो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा शुरू से लेकर के, यूं कहें कि जन्म से लेकर पैदा होते से लेकर के काफ़ी समय तक उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो मधुबन में भी काफ़ी टाइम रही थी और यहाँ बाबा की जो मुरली चलती थी उसको सिंधी भाषा में लिखती थी और बहुत एक्सपर्ट हर बात के अंदर वो जल्दी सीख भी जाती थी। और वहाँ जाकर के मराठी भी सीख गई, मराठी तो ऐसे बोलती थी जैसे वो वहाँ की हो। यहाँ रहते हुए बाबा के साथ उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किए। तो उस समय हम यहाँ पर आए थे मधुबन में, काफ़ी टाइम रहने का मौका, बाबा के साथ रहने का मौका मिला। तो बाबा ने उस समय क्या किया था, सब दादियों को वरिष्ठ दादाओं को यहाँ पर ही बुला लिया था, क्योंकि पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो अमृत वेले योग के बाद, मई जून का महीना था, अमृत वेले योग के बाद बाबा आंगन के, जहाँ है ना यशोदा जी का ऑफिस, वो बाबा का ऑफिस था, वहाँ पर बाहर खड़े हो जाते थे। सब दादियाँ होती थी और दादियों के साथ बाबा उनको दृष्टि देते थे, और दृष्टि देते देते यहाँ जो निवेद भाई का ऑफिस है वहाँ पर सीढ़ियों पर आकर के बाबा खड़े हो जाते थे। बाबा दृष्टि देते, फिर वरदान देते, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट का ऑफिस है वो उस समय एक छोटी सी पहाड़ी और बगीचा था, तो बाबा वहाँ पर आकर के खड़े होकर के सबको कहते थे सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाओ। फिर उसके बाद फिर बाबा पांडव भवन के गेट के बाहर जाते थे, बाबा कहते थे सारे विश्व के अंदर फरिश्ते घूमने जाओ, सारे विश्व के अंदर फैल जाओ, इन फरिश्तों के द्वारा लोगों को साक्षात्कार हो। तो बाबा ने ये शुरू से कराया था और बाबा कहते थे एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर बाबा के पास बहुत बच्चे आएंगे, देश विदेश में सेंटर खुलेंगे और देश विदेश के अंदर सेवा होगी। उस समय तो इतना कोई सेंटर नहीं थे, पूरे भारत के अंदर भी थोड़े से थे। तो बाबा ने ये सारा जो किया इस स्थान पर योग के द्वारा इसके वातावरण को इतना शक्तिशाली बना दिया। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद, क्योंकि हम अव्यक्त होने के बाद, अव्यक्त जब बाबा साकार में थे यहाँ पर बाबा के पास रहे, उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ में नौकरी करती थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर मैं यहाँ पर मधुबन में आई और रहना शुरू किया। उस समय फिर दादी ने हमको और पुष्पा दीदी को भेजा था कलकत्ता, पटना और नेपाल। फिर मैं तो वहाँ उधर रह गई और पुष्पा दीदी वहाँ से फिर नागपुर चली गई थी और नागपुर में रह करके उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाएं की। और फिर बाबा के होते फिर कुछ समय के बाद फिर मैं यहाँ आ गई। दादी ने कहा आपको यहाँ पर ही रहना है। और दूसरी बात, बाबा जैसे कहते थे कि समय आने पर बाबा के बच्चे बढ़ जाएंगे, स्थान भी बढ़ेंगे, लेकिन स्थान बढ़ने के बाद भी बच्चों को कितना स्थान मिलेगा, जितना पहले मिलता था उतना ही मिलेगा। बाबा के टाइम पर तो सब पट पे सोते थे, जमीन पे सोते थे। दादी के टाइम पर भी कुछ जमीन पे, फिर कुछ खटिया बनने लगी उस पर सोते थे। लेकिन यहाँ पर तीन पैर पृथ्वी मिलना वो भी बहुत बड़ी बात है। जम्मू में जाओ, मंदिर में जाते हैं, लोग कैसे कैसे बैठे रहते हैं, रास्ते में कहाँ बर्फ पड़ जाती है, रास्ते रुक जाते हैं, सड़क पर बैठे रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे हैं, बाबा ध्यान रखते हैं। बाबा के टाइम पर जब बच्चे आते थे ना तो बाबा सब बच्चों से पूछते थे सब ठीक हो। अब बाबा पूछते हैं सब ठीक हो, आराम से रहे हुए हो, है क्या कहेंगे, सब खुश हो अपने कमरों में। बाबा को क्या कहें, खुश हैं क्या, खुश है ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अरे बाबा के घर में जब अभी तो शांतिवन में प्रोग्राम होते हैं ना, तो बाबा के घर में चक्कर लगाने के लिए आते हैं। कहेंगे एक रात रहने दो, एक आधा दिन रहने दो, एक घंटा तपस्या करने दो। आपको तो चार दिन तपस्या करने के लिए मिल रहा है। जब नीचे से आते तो क्या होता है, चारों धाम की यात्रा ऐसे ना मंदिर की परिक्रमा करके चले जाते हैं। और अभी परिक्रमा नहीं करनी है, अभी तो क्या करेंगे, अभी तो वहां बैठ करके अनुभव करेंगे, है ना, अनुभव करेंगे ना। अभी क्या शांति स्तंभ पर सफाई चल रही है। एक बात बताती हूँ, जब आप शांति स्तंभ पर योग करने बैठेंगे उस समय मोबाइल भी नहीं ऑन करना। कई बार वहां जाकर के अंदर बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपस में बैठ जाते हैं, ज्ञान की रूह रोहन करने बैठ जाते हैं, फोन पे बातें करने बैठ जाते हैं, लेकिन उस स्थान का महत्व क्या है वो अनुभव करना है। तो वहां ना तो मोबाइल फोन ऑन रखना, ना आपस में बातें करना। बाबा से जितनी बातें करनी है, बाबा से जितनी रूह रोहन करनी है, बाबा से जितना प्राप्ति करनी है वो कर सकते हैं। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आते थे। फिर बाबा के बच्चे तो बढ़ने लगे, एक बार तो इतने बच्चे आ गए। फिर अव्यक्त बाप दादा का पार्ट पांडव भवन के आंगन में रखा था। ये ऑफिस के बाहर बड़ी स्टेज बनाई थी और सब भाई बहने बाहर आंगन में बैठे थे। फिर उसके बाद प्लान किया गया कि बाबा के बच्चे तो बहुत आएंगे तो कहाँ पर बिठाया जाए। तो ये जो स्थान आप बैठे हैं ना, ये बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी। बाबा का आप एक फोटो देखेंगे ऐसे ही तपस्या करते हुए, तो बाबा इस पहाड़ी पर बैठ करके तपस्या करते थे। बाबा बच्चों को बुलाते थे, दादियां भी एक बैठ करके तपस्या करते थे। कभी कभी गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ करके बाबा के पास आ जाते थे। बाबा उनको बहुत विशेष पालना देते थे। और इस पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल भी थी, जो बगीचे में देखेंगे छोटी सी है, वो पूरी यहाँ पर थी। और 24 जून को मम्मा दिवस के निमित्त यहाँ पर बड़ा बड़ा अंगूर निकलता था। और बाबा सभी सेंटर्स पर, चार पांच ग्रुप के अंदर सभी सेंटर्स पर भेजते थे। एक ग्रुप दिल्ली में जाएगा, एक महाराष्ट्र में जाएगा, एक बॉम्बे जाएगा, एक पंजाब में जाएगा, तो मम्मा की याद के वो भेजते थे। फिर जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे तो फिर प्लान किया गया तो कहाँ किया जाए, तो इस पहाड़ी को समतल करके इसके ऊपर ये हॉल बनाया गया है। तो आप जहाँ भट्ठी करेंगे आपको डबल फायदा है। एक तो ये बाबा की पहाड़ी जहाँ बाबा ने बैठ करके तपस्या किया, दूसरा 1975 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आते थे। अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और यहाँ हॉल में कोई कुर्सी या सोफा नहीं होता था। हम सब के सब बाबा के पास यहाँ बैठे रहे, जैसे ना बच्चे माँ बाप के पास बैठे रहते हैं ना, ऐसे हम सब बैठे रहते थे। तो अभी आप इस हॉल में जो करेंगे, वहाँ तो आपके हॉल बहुत सुंदर है, रिट्रीट सेंटर का बहुत अच्छे हॉल है, खुले खुले हैं, लेकिन यही जो हॉल है विशेष अनुभव कराने वाला। एक तो बाबा की तपस्या का पहाड़ी है, दूसरा अव्यक्त बाप दादा के वरदानों से भरपूर ये हॉल है। तो इस हॉल में आपको भट्टी करने का मौका मिल रहा है, और जो भी भाई बहने आप सबको क्लास कराने के लिए आएंगे बहुत पावरफुल क्लासेस मिलेंगे, लेकिन क्लासेस के साथ साथ झोली भी आपकी भरती जाएगी। अब झोली भर जाएगी तो क्या करोगे हैं? तिजोरी भर जाती है तो क्या करोगे हैं? उसका मनन करते जाना है ना, उसका यूज करते जाना है। बाबा कहते जितना आप इसका मनन करते जाएंगे उतना आपका और अंदर की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप जो मधुबन में आकर के तपस्या करते हैं ना, उसका अपना महत्व है। अपने स्थान पर करते हैं वो तो है ही है पावरफुल स्थान, लेकिन ये विशेष बाबा के साथ का अनुभव कराता है। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं हम इतना देरी से क्यों आए, बाबा ने हमको क्यों देर से बुलाया, हमने तो बाबा को देखा नहीं है। बाबा को उलहने देते ना, बाबा बच्चों को उलहने देते। बाबा कहते देखो मैं तुमसे मिलने आता हूँ तुम कहाँ चले जाते। अब आप जब आप भट्टी करेंगे ना, बाबा आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बाबा जब मुरली चलाते थे ना हिस्ट्री हॉल में, मुरली चलाते थे, योग कराते थे, बाबा खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के पूरे हॉल के अंदर चक्कर लगाते थे, और जैसे ही चक्कर लगाते थे तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी हर एक उड़ने लग जाता था। उड़ना मीन्स ऐसे उनको अनुभव होते थे हम सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ते बन गए हैं। अभी भट्टी में भी बाबा आपको वैसा अनुभव कराएंगे। अगर आपने इधर देखा उधर देखा, बाबा जो दृष्टि द्वारा वरदान दे रहे हैं वो दूसरा ले लेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि बाबा मेरे साथ हैं। और बाबा ने क्या कहा है, जब तक संगम युग है तब तक मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। फिर बाबा ने कई बार बच्चे कहते हैं बाबा कब तक हम ये ज्ञान सुनेंगे, बाबा कहते क्या चाहते हो तो मैं चला जाऊं। बाबा कहते तुम यही चाहते हो, अरे सारे कल्प के अंदर ये संगम युग ऐसा मिलता है जिस युग के अंदर हम बाबा के साथ हैं और इतने अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिलता है, इतनी प्राप्तियां होती हैं। दुनिया में देखो तो क्या हाल है, कोरोना आया तो लोग दुखी हुए, और यहाँ कोरोना आया तो बाबा के बच्चों ने क्या किया, इतना ज्ञान सुना, ऑनलाइन ज्ञान सुनते रहे, जूम पर ज्ञान सुनते रहे, सारा टाइम क्लासेस करते रहे, कितना भरपूर हो गए। तो बाबा कहते हर परिस्थिति में ब्राह्मणों को प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो ब्राह्मणों को इस संगम युग के अंदर जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ लेते जाएं। संगम युग में शरीर कैसा भी हो लेकिन इस शरीर की भी संभाल करनी है, और संभाल के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है, आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा के घर में बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे हैं, तो इसलिए बाबा भी बहुत प्यार करते हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और दूसरी बात आपको बताएं कि समय ऐसा चल रहा है, अभी भी कोरोना कहाँ ना कहाँ घूमता है, किस देश में घूम जाता है किस देश में घूम जाता है, भारत के अंदर भी कई ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। आप सबको एक बात का ध्यान रखना है कि मास्क जरूर डाल के रखो, ठीक है ना, क्योंकि अभी हॉल में नजदीक नजदीक बैठे हैं, जहाँ खुले खुले बैठ सकते हैं वहाँ खुले खुले बैठे, पूरा टाइम मास्क जरूर डाल के रखें, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। जब बातचीत करते हैं तो नजदीक होकर के बात नहीं करें, और मास्क डाल करके रखें, दूरी बना करके रखें। और दूसरी बात, अमृत वेले योग के बाद कई समय तक चलो हम थोड़ा नक्की लेक की तरफ वॉक करें, आपको मालूम हो कि माउंट आबू फॉरेस्ट एरिया है, ये जंगल का एरिया है, और इस एरिया के राजा कौन होते हैं, इस एरिया के राजा हैं भालू, है ना, भालू ज्यादा घूमता है। तो उस समय कोई भी अकेला या दो तीन ऐसे जाएंगे अंधेरे में तो भालू तो खुश हो जाएगा, ऐसे योगी मिले और क्या चाहिए उसको, है खुश हो जाएगा ना। इसलिए अंधेरे में नहीं जाने का, जब कभी रोशनी होती है, क्लास के बाद होता है तब तो जा सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम 5 बजे के बाद अंधेरा होता है, तो इसलिए कई समझते चलो योग में चले जाएं, क्योंकि उनको तो कुछ भी उनका ही घर है। हम बाबा ने तो जंगल में मंगल बना दिया है, लेकिन स्थान तो उनका है ना, वो कभी भी किसी भी समय कहाँ से निकल आते हैं, तो आपके पास आएंगे नहीं, लेकिन बाबा कहते ध्यान रखना है कि अंधेरे में अकेले नहीं जाना है। और फिर अभी आप सबको कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, तो आप अपने निमित्त टीचर बहनों को बता सकते हैं, और कुछ भी ऐसा कोई काम है तो वो भी बता सकते हैं, टीचर बहनें हमको बता देंगे। बाकी तो सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है रहने में, नहीं ना? अच्छा, दूसरा, जब बाबा के पास आते थे ना, तो बाबा कभी कभी आंगन में खड़े होते थे, बाबा बच्चों को रिसीव करते थे। दादी के टाइम पर भी जब पार्टियां आती थी, दादी आंगन में खड़ी होती थी, दादी भी उन सब से मिलती थी। फिर बाद में कहते थे हमको बाबा और दादी से मिलना है, तो उनको हम पूछते थे क्यों अभी तो मिले थे, कहते टोली कहाँ खाई है। टोली खाना मीन्स मिलना है, टोली क्या है, हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है ना। आप देखो बाबा के टाइम पर बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे। बाबा टोली क्यों कहते, बाबा कहते ये मेरे लाडले बच्चे हैं, और बाबा कहते ये मेरे टोलपुट हैं। टोलपुट समझते हो हैं कि नहीं, टोलपुट क्या होता है, टोल में जैसे घर में ना कोई चीज, बच्चों को चीज खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसको के बच्चों को कहेंगे आओ तुमको मिठाई खिलाते हैं ना, तो टोली मीन्स, टोल मीन्स स्वीट, तो बाबा कहते थे ये मेरे स्वीट बच्चे हैं, पूरे कलब के बाद मिले हैं, तो बाबा कहते आओ टोल पुट, बाबा टोली खिलाते थे, और बाबा सबको टोली खिला करके मुख मीठा भी कराते, प्यार भी करते, प्यार में बाबा फिर शिक्षा भी देते थे। बाबा कहते थे देखो ये सारा कार्य शिव बाबा का है, शिव बाबा ही बच्चों की पालना करता है, तो शिव बाबा को तो हमें याद करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता था बाबा बच्चों से बहुत रमणीक बातें करते, बच्चों को हंसाते भी थे, बहलाते थे, घुमाते भी थे, खिलाते भी थे, कभी बाबा पहाड़ी पर ले जाते थे, बाबा कहते थे जैसे पहाड़ी पर कदम संभल संभल के रखते हैं, जरा सा पांव स्लिप करेगा ऊपर से एकदम नीचे आ जाएंगे, तो बाबा कहते थे ज्ञान में भी हमें क्या करना है, अपने मन बुद्धि के कदमों को संभाल करके रखना है, ऐसा संभल संभल के कि हमारी बुद्धि इधर ना जाए, किधर कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। फिर बाबा को कहते बाबा क्या करें हम आपको याद नहीं कर सकते, तो बाबा कहते बाप ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के कदमों पर चलना है। फिर बाबा बच्चों को शिक्षा बहुत प्यार से देते थे। एक बार बाबा ने क्या कहा, टोली बांटी, फिर बाबा ने कहा अच्छा जिस बच्चे ने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है तो वो हाथ खड़ा करे, बाबा उसको टोली देंगे दूसरी टोली। तो टोली की तो लालच होता है, तो दो चार ने हाथ खड़ा कर दिया, बाबा ने कहा ठीक है आओ इधर खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया। बाबा ने कहा देखा आज क्या भूल किया, पहले तो उसको स्कूल में टीचर होता है ना सजा देता है, खड़ा कर देता है, तो बाबा ने कहा क्या भूल किया, बाबा को याद किए बिना टोली खा ली, फिर क्या करोगे, बाबा आगे से ऐसे नहीं करूंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, देखो सबके सामने बोल रहा है आगे से नहीं करूंगा, तो बाबा ने टोली भी दिया, फिर कहा देखो अभी बाबा से प्रॉमिस करो कि शिव बाबा हमको खिलाने वाला है, शिव बाबा देने वाला है, हम उसको याद करें, याद करने से हमें प्राप्ति होती है, शिव बाबा हमको खिलाता है उसको याद करते हैं तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारे अंदर भी गुण आते हैं। तो बाबा क्या करते थे, इतने प्यार से शिक्षा भी देते, प्यार भी करते, शिक्षा भी देते, और वो शिक्षा ऐसी होती थी जो अंदर ही घर कर जाती थी, जो कभी भी उस बात को भूलते नहीं थे। तो बाबा बहुत प्यार से सबको खिलाते भी थे और संभालते भी थे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सबको प्यारे बाबा के घर से मुख मीठा कराया जाएगा। देखो बाबा ने भी शुरू में ऐसा सिस्टम बनाया था कि क्लास के बाद सब बच्चों को टोली खिलाते थे। अभी आपको पता है सेंटर पर क्लास के बाद टोली नहीं मिलती, शांतिवन में भी नहीं मिलती है, लेकिन पांडा भवन में रोज मुरली क्लास के बाद टोली मिलती है। क्योंकि सेंटर पर तो जब क्या होता है, कोई बड़ी बहन आ गई, कोई बड़ा प्रोग्राम है तब मिलेगा, यहाँ तो रोज मिलती है। बाबा ने जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो आपको बाबा अपनी गोदी में बिठाकर खुशियों के झूलों में झुलाते रहेंगे और सब वरदानों से भरपूर करेंगे। और अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर जब टोली लेने के लिए आएंगे तो एक तो सब मास्क लगा के रखे, हाथ लंबा करेंगे और टोली लेकर के फिर वापस जाएंगे। भाई जो है भोजन, पहले भाइयों को बुलाएंगे, फिर भोजन करने के लिए जाएंगे, फिर माताएं भोजन करने के लिए जाएंगे, और फिर वहां पर भी कोई जो नहीं चढ़ सकते हैं, आपको बताया होगा वहां पर लिफ्ट है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी एक मिनट बाबा की याद में, फिर उसके बाद सबको टोली मिलेगी। ओम शांति।
बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा।